मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इसके अंतर्गत आपकी अगला अध्याय है जात व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत। इसकी भूमिका निम्न प्रकार है। भारत की जाति व्यवस्था संसार के सभी विचारकों के लिए एक अनोखी, जटिल और आश्चर्यजनक संस्था रही है। भारतीय जीवन तो इस व्यवस्था से कुछ इस प्रकार घुल मिल गया है कि हम इस व्यवस्था को जीवन के एक स्वाभाविक ढंग के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन पाश्चात्य विचारकों ने इस अनोखी संस्था के उद्भव को लेकर इतना विवाद उत्पन्न कर दिया कि आज यह जानना आवश्यक समझा जाने लगा है कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास किन परिस्थितियों का परिणाम है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था का इतिहास इतना प्राचीन रहा है कि इसकी उत्पत्ति के वास्तविक आधार को समझने के सैकड़ों प्रयत्न होने के बाद भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है। यूरोप के आरंभिक समाजशास्त्री जाति व्यवस्था को पूर्णतया एक हित प्रधान व्यवस्था मानते थे, जिसका निर्माण तत्कालीन अभिजात वर्ग के द्वारा अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए हुआ, जबकि कुछ विद्वानों ने इसे भारतीय कर्मकांडों का दुष्परिणाम मान लिया। बहुत से अन्य विचारकों ने व्यवसाय, वर्ग भिन्नता, प्रजातीय भिन्नता, रक्त की विशुद्धता की धारणा, जनजातीय विश्वासों, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक पृथकता आदि के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। ब्लंट का कथन है कि इसमें कुछ सिद्धांत तो बिल्कुल हास्यास्पद हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों को काफी चतुरता और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया गया है वे भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के वास्तविक आधार को स्पष्ट नहीं करते। इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों और उनकी वास्तविकता को स्पष्ट करना है, जिससे हम अपनी ऐतिहासिक संस्था के बारे में एक सही दृष्टिकोण से विचार कर सके। पहली हेडिंग है परंपरागत सिद्धांत। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। इसका स्पष्ट रूप विभिन्न हिंदू धर्म शास्त्रों में देखने को मिलता है। यद्यपि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें व्यक्त विचारों को ही हम परंपरागत सिद्धांत से जोड़ लेते हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को कुछ अलौकिक विश्वासों के साथ जोड़ा गया है और इस प्रकार इस व्यवस्था को एक ईश्वरीय व्यवस्था मान लिया गया है। इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख स्रोतों के निष्कर्ष इस प्रकार हैं। क, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न वर्णों जाति व्यवस्था का आरंभिक रूप की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों द्वारा हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों, बाहों से क्षत्रियों, उरु अथवा उदर के निम्न भाग से वैश्यों और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। इसके बाद वेदों में विभिन्न वर्णों के कार्यों को भी स्पष्ट किया गया है। वास्तव में ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग बहुत कम स्थानों पर हुआ है। जाति शब्द का प्रयोग तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। कुछ विद्वान तो पुरुष सूक्त को ऋग्वेद का मौलिक अस्तक नहीं मानते। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भारत में जाति जैसी व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। ख, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य पूर्ण करने के लिए की गई। ब्रह्मा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को जन्म दिया, लेकिन जब ब्राह्मणों की सहायता से वह समस्त कार्यों को करने में सफल नहीं हो सका तब उसने क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया। इसके बाद अन्य कार्यों के भी शेष रह जाने पर उसने पूरा करने के लिए क्रमशः वैश्यों और शूद्रों को जन्म दिया गया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और उपनिषदों के कथन से स्पष्ट होता है कि इस समय तक केवल विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति संबंधी विचारों को ही स्पष्ट किया गया था। इससे स्पष्ट तथ्य भी स्पष्ट होता है कि उपनिषद काल तक विभिन्न जातियों का निर्माण नहीं हो सका था। गौ, महाभारत और गीता में भी विभिन्न जातियों की उत्पत्ति को वर्ण संकरता के आधार पर स्पष्ट किया गया है, लेकिन इनके अनुसार स्वयं वर्ण विभाजन का आधार जन्म न होकर बल्कि कर्म है। महाभारत में भृगु का कथन है कि आरंभ में केवल एक वर्ण ब्राह्मण ही था, लेकिन बाद में जो ब्राह्मण विद्या, अध्यावसाय, तप और सदाचार को छोड़कर क्रोधी, पराक्रमी और विलासी हो गए, उनका रंग लाल पड़ गया तथा इस प्रकार वे क्षत्रिय कहलाने लगे। जिन ब्राह्मणों ने पशुपालन, कृषि और व्यापार के द्वारा जीविका उपार्जित करना आरंभ कर दिया उनका रंग पीला हो गया और उन्हें पैश्य कहा जाने लगा। कुछ व्यक्तियों में असत, लोभ, अनाचार और नित्य कर्म कर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए, इनका रंग काला हो गया और वे शुद्ध कहलाए। इस प्रकार वर्ण विभाजन का आधार व्यक्तियों के गुण और कर्म थे। विभिन्न वर्णों के विभिन्न रंग अर्थात सफेद, लाल, पीला और काला भी क्रमशः उनमें पवित्रता, पराक्रम, राजस और तामस गुणों को ही प्रतीकात्मक रूप में स्पष्ट करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने स्वयं उनके गुण और कर्म के आधार पर किया है। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर हुई है, बाद में जिन लोगों ने गुण और कर्म अपने वर्ण से भिन्न हो गए उन्हें अपने वर्ण के अंदर ही एक नए समूह के रूप में देखा जाने लगा। इससे स्पष्ट है कि जातियों के समान कुछ समूहों के निर्माण की प्रक्रिया महाभारत काल के अंत तक आरंभ हो चुकी होगी, यद्यपि इस समय तक जाति जैसी किसी व्यवस्थित संस्था का निर्माण नहीं हुआ था। घ मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को ही स्वीकार किया गया है, लेकिन साथ ही इसमें सबसे पहली बार जातियों की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए मनु का कथन है कि इनका उद्भव प्रतिलोम विवाह अथवा वर्ण संकरता के कारण हुआ। इसका तात्पर्य है कि यदि एक निम्न वर्ण का पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह कर ले तब ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें वर्ण संकर कहलाती हैं, और मनु के अनुसार ऐसी सभी वर्ण संकर श्रेणियां एक नई उपजाति का निर्माण करती हैं। इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि समाज में जैसे जैसे विभिन्न वर्णों के बीच मिश्रण बढ़ता गया उपजातियों की संख्या में वृद्धि होती गई। हेडिंग है समालोचना। अनेक आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। क यह सिद्धांत वास्तव में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नहीं। जाति की विशेषताएं वर्ण से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए यह सिद्धांत का व्यवहारिक रूप से कुछ अस्तित्व नहीं है। दूसरा, वर्तमान युग में कोई भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि विभिन्न वर्णों तथा जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हो सकती है। यह कथन अधिक से अधिक एक पौराणिक गाथा के रूप में ही मान्य हो सकता है। तीसरा, इस सिद्धांत से यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है कि जाति व्यवस्था के विभाजन का वास्तविक आधार व्यक्ति का जन्म है अथवा कर्म। वेदों, उपनिषदों, गीता और स्मृतियों में दी गई व्याख्याएं परस्पर विरोधी होने के कारण स्पष्ट नहीं है। चौथा, मनु का कथन है कि जातियों का विभाजन प्रतिलोम विवाह अथवा वर्ण संकरता के द्वारा हुआ अत्यधिक ब्रह्मपूर्ण है। यदि प्रतिलोम विवाह ही जाति विभाजन का कारण होता तब मुख्य जातियों की तुलना में उपजातियों के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती, जबकि वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। पांचवा, अंत में यह सिद्धांत अधिक से अधिक जाति व्यवस्था की प्राचीनता पर ही कुछ प्रकाश डालता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में यह सिद्धांत किसी महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट नहीं कर पाता। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित अगला सिद्धांत है प्रजातीय सिद्धांत। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में प्रजातीय आधार को लगभग सभी विद्वानों ने किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया है। एक और रिजले और डॉक्टर मजुमदार जैसे विद्वान इस कारक को सबसे अधिक महत्व देते हैं, जबकि दूसरी ओर घुरिए, एन के दत्ता और राय ने प्रजाति आधार को एक सहयोगी आधार के रूप में ही स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रजातीय कारकों के योगदान को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। हर्बर्ट रिजले के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति के तीन कारक आधारभूत रहे हैं, क प्रजातीय संपर्क, ख इस संपर्क से उत्पन्न वर्ण संकरता तथा ग वर्ग भेद की भावना। आपके अनुसार ग वर्ण भेद की भावना। आपके अनुसार भारत में जाति व्यवस्था आरंभ से ही विद्यमान नहीं थी, बल्कि इसका आरंभ आर्यों की उस शाखा के द्वारा हुआ जिसने गिलगित और चिवाल के रास्ते भारत में आकर यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को परास्त किया था। रिजले का कथन है कि जहाँ कहीं विश्व के इतिहास में एक जनसमूह ने दूसरे जनसमूह पर आक्रमण करके उन्हें परास्त किया, वहाँ विजेताओं ने हारे हुए समूह की स्त्रियों को तो पत्नियों के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अपने समूह की स्त्रियों को हारे हुए लोगों के संपर्क में जाने पर प्रतिबंध लगाए। यदि विजित और विजेता एक ही प्रजाति के होते हैं तब उनके बीच अनुलोम विवाह की धारणा जल्दी ही कमजोर पड़ जाती है और दूसरे दोनों समूह एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन यदि इन दोनों समूहों की प्रजातीय विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं तब अनुलोम अथवा कुलीन विवाह को एक नियम का रूप दे दिया जाता है। इस स्थिति में प्रभावशाली अथवा विजेता लोग दूसरे रक्त के समूहों से सामाजिक दूरी की नीति अपनाते हैं। यहीं से वर्ण संकरता की स्थिति आरंभ होती है, क्योंकि विजेता और विजित समूह के स्त्री पुरुषों के बीच अनियमित सहवास तब भी स्थापित होता रहता है। इस प्रकार रक्त की विशुद्धता और वर्ण संकरता के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच ऊंच नीच की भावना जन्म ले लेती है। रिजले का विश्वास है कि आर्यों में विशुद्धता के आधार पर सामाजिक विभाजन की व्यवस्था पहले से प्रचलित थी, जब आर्य भारत में आए तब उन्होंने प्रजाति आधार पर स्वयं को उच्च और द्रविड़ों को निम्न वर्ण का कहना आरंभ कर दिया। कालांतर में प्रजातीय संपर्क में वृद्धि होने से आर्य स्वयं भी रक्त की विशुद्धता के आधार पर तीन प्रमुख वर्णों में विभाजित हो गए, जबकि द्रविड़ों को दास अथवा शूद्र कहा जाने लगा। इसके उपरांत जब कभी भी अनुलोम के विवाह की अवहेलना हुई तब उच्च वर्ण की स्त्रियों ने निम्न वर्ण के पुरुषों से विवाह संबंध स्थापित किए। तब ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर मान लिया गया तथा इस वर्ण संकर समूह को एक नवीन जाति के रूप में देखा जाने लगा। इस आधार पर वैवाहिक नियमों का उल्लंघन होते रहने की स्थिति में जातियों की संख्या निरंतर वृद्धि होती रही और वर्ग भेदभाव की भावना के कारण कभी भी एक जाति दूसरी जाति से नहीं मिल सके। इस प्रकार रिजले के अनुसार प्रजातीय संघर्ष, अनुलोम विवाह की नीति, प्रजातीय मिश्रण, वर्ण संकर समूहों का निर्माण, वर्ण भेद आदि जातियों की उत्पत्ति का वास्तविक क्रम रहा है। रिजले ने तो यह निष्कर्ष दे दिया कि भारतवर्ष में व्यक्ति की नाक की बनावट से ही उसकी सामाजिक अथवा जातिगत स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। डॉक्टर मजूमदार ने भी जाति व्यवस्था की विभाजन, जातियों में ऊंच नीच की व्यवस्था और उपजातियों के निर्माण की स्थिति को प्रजाति आधार पर स्पष्ट किया है। रिजले के मत से सहमत होते हुए आपने यह स्वीकार किया है कि भारत में आने से पहले ही आर्यों ने सामाजिक विभाजन की एक स्पष्ट नीति प्रचलित थी। द्रविड़ों को परास्त करने के कुछ समय बाद से आर्य अपने रक्त की विशुद्धता के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे तीन उच्च वर्णों में विभाजित हो गए, जबकि द्रविड़ों की निम्नतम श्रेणी में रखा गया। आर्यों के आने के बाद ही भारत में विभिन्न प्रजातीय समूहों का आना समाप्त नहीं हो गया, बल्कि यहाँ एक लंबे समय तक अनेक प्रजातीय समूहों का कि अप्रवास और आक्रमणों की प्रक्रिया चलती रहे। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रजातीय समूहों के पारस्परिक संघर्ष और सांस्कृतिक संघर्षों के कारण भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों का निर्माण हो गया। ये सभी समूह अंतर्विवाही बन गए, जिससे वे दूसरे प्रजातीय समूहों के प्रभाव से बचकर अपनी प्रजातीय विशुद्धता और सांस्कृतिक एकता की रक्षा कर सके। इस प्रकार सामाजिक संगठन का निर्माण एक ऐसे संस्करण के रूप में हुआ जिसमें प्रत्येक जाति का पद उस समूह के रक्त की शुद्धता और अन्य समूहों से उसके पृथक्करण के आधार पर निर्धारित हो गया। ब्राह्मणों ने अपनी प्रजातीय विशुद्धता को सबसे अधिक बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में उन्हें सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो गई। भारत की मूल जनजातियों ने भी अपनी विशुद्धता को बनाए रखने के प्रयत्न किए, लेकिन अन्य समूहों से उनका अधिक संपर्क न होने के कारण उन्हें निम्नतम सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई। इन दोनों के बीच सैकड़ों अन्य समूह थे जिनके रक्त की विशुद्धता और सांस्कृतिक संपर्क की मात्रा एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। इन सभी समूहों की सामाजिक स्थिति को लेकर भारत में जिस व्यवस्था का निर्माण हुआ उसी को हम गलती से हिंदू जाति व्यवस्था कहते हैं। इसके उपरांत भी जाति व्यवस्था में प्रजाति आधार के महत्व को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि पूर्व ऐतिहासिक काल से ही भारत में विभिन्न स्थानों पर उच्च जातियाँ भूमध्य सागरीय और अल्पाइन जाति की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, जबकि निम्न जातियों में प्रोटो अल्स्ट्राइड प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं का आधिक्य पाया जाता है। घुरिये ने जाति व्यवस्था के उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रजातीय सिद्धांत की रचना नहीं की है, जैसा कि सामान्यतया समझ लिया जाता है, कि बल्कि आपने रिजले के सिद्धांत के कुछ अंशों को ही स्वीकार किया है। आपके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत का विवेचन हम आगामी पृष्ठों में करेंगे। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त है कि आपके अनुसार आर्यों ने अपनी सांस्कृतिक और प्रजातीय विशुद्धता को बनाए रखने के लिए द्रविड़ों से पृथकता के नीति अपनाई। कालांतर में रक्त की पवित्रता के आधार पर विभिन्न समूह उच्च और निम्न स्थिति वाले अनेक सामाजिक समूहों में विभाजित हो गए। इस प्रकार प्रजाति आधार पर केवल इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जाति व्यवस्था का आरंभिक स्रोत आर्यों और द्रविड़ों के प्रजातीय भिन्नता थी, यद्यपि जाति व्यवस्था का वास्तविक विकास कुछ अन्य कारणों से हुआ। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार है। जाति व्यवस्था के उत्पन्न में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण और प्रजातीय विशुद्धता की धारणा का अवश्य ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन फिर भी प्रजातीय कारण को जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का एकमात्र आधार नहीं कहा जा सकता। हट्टन का कथन है कि प्रजातीय संपर्क केवल भारत में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग सभी समाजों में हुआ है, किंतु किसी भी समाज में जाति व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जाति व्यवस्था का निर्माण करने में प्रजाति के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी क्रियाशील रहे होंगे। दूसरा, इस सिद्धांत की एक कमी यह है कि इसके द्वारा आर्यों के बीच ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जैसे प्रमुख तीन वर्ण बनने का कारण स्पष्ट नहीं होता। केवल इतना कह देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता कि आर्यों में सामाजिक स्त्रीकरण का प्रचलन पहले से ही था। तीसरा, यदि प्रजाति ही जाति विभाजन का आधार है तब भारत बाहर से आकर बसने वाले मुसलमानों में व्यवस्था अत्यधिक विकसित क्यों नहीं हो सकी। चौथा, प्रजातीय सिद्धांत के द्वारा विभिन्न जातियों के बीच खान पान के प्रतिबंध और उनके भिन्न भिन्न व्यवसायों का कारण भी स्पष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में प्रजातीय सिद्धांत को केवल आंशिक मान्यता ही दी गई है।